एकत्र ज्ञानोष्ठि, आज के जरूरी विचारों का सार, अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञानोष्ठि में आपका स्वागत है।
ज्ञानोष्ठि में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम किताब पर बात करने वाले हैं, जिसने 20वीं सदी की सियासत को समझने की एक नई नज़र दी।
नमस्कार।
हाँ बिल्कुल, ये किताब है हन्ना एरेंट की, द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म।
और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, आज भी दुनिया में जिस तरह की चीजें हो रही हैं, उनको समझने के लिए ये किताब बहुत जरूरी हो जाती है।
सही कहा, ये किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि नाजी जर्मनी या स्टालिन का सोवियत संघ जैसी भयानक व्यवस्थाएं आखिर कैसे पनप सकें।
हाँ, एरेंट का मूल सवाल यही था कि यूरोप, जो खुद को इतना सभ्य मानता था, वहां होलोकॉस्ट और गुलाग जैसे अमानवीय अत्याचार कैसे मुमकिन हो गए। इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे आज।
और इस कोशिश को समझने के लिए पहले हन्ना एरेंट को जानना जरूरी है।
बिल्कुल।
वो कोई सिर्फ लाइब्रेरी में बैठकर लिखने वाली विचारक नहीं थी।
बिल्कुल नहीं, वो एक जर्मन यहूदी थी। 1906 में जन्म हुआ और 1975 तक उन्होंने दुनिया देखी। और क्या दुनिया देखी।
हाँ, उन्होंने नाजी दौर का आतंक खुद झेला। 1933 में जब हिटलर आया तो उन्हें जर्मनी छोड़ना पड़ा।
सोचिए, फिर फ्रांस गईं, वहां भी शरणार्थी की तरह रहीं, नजरबंद भी हुईं, और फिर बड़ी मुश्किल से 1941 में अमेरिका पहुंची।
मतलब राज्यविहीनता, उत्पीड़न, राजनैतिक व्यवस्थाओं का ढहना, ये सब उन्होंने अपनी आंखों से देखा भोगा।
और यही अनुभव उनके लेखन में झलकता है। ये सिर्फ अकेडमिक विश्लेषण नहीं है, ये उस तबाही को समझने की एक गहरी पर्सनल कोशिश है जिसने उनकी अपनी दुनिया हिला दी थी।
बिल्कुल। और उनकी ट्रेनिंग फिलॉसफी में थी, वो एक राजनीतिक सिद्धांतकार थीं, इतिहासकार नहीं। वो खुद को कहती थीं कॉन्शियस पराया, मतलब एक सचेत बाहरी व्यक्ति,
जो शायद किनारे पे खड़े होकर वो देख सकता है, जो भीड़ के अंदर वालों को नजर नहीं आता।
एग्जैक्टली। और यही बाहरी नजर और भोगा हुआ यथार्थ उनकी बातों को बहुत ताकत देता है।
तो चलिए, आप किताब पर आते हैं, द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। जैसा हमने कहा, ये सिर्फ नाजी जर्मनी या स्टालिन के रूस का इतिहास नहीं बताती।
नहीं, ये उनकी उत्पत्ति यानी ओरिजिन्स की पड़ताल करती है। वो कौन से तत्व थे, कौन सी जमीन थी जिसने इनके उदय को मुमकिन बनाया।
और रेरेंट का जो सबसे बड़ा तर्क है वो ये कि सर्वसत्तावाद, मतलब टोटलिटेरियनिज्म, ये कोई पुरानी तानाशाही या जुल्म का बस थोड़ा ज्यादा बुरा रूप नहीं था।
हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। वो कहती है ये कुछ बिल्कुल नया था, अभूतपूर्व, एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसका मकसद सिर्फ सत्ता पर कब्जा करना नहीं था।
तो फिर क्या था?
मकसद था वैश्विक प्रभुत्व और उससे भी बढ़कर खुद इंसान के स्वभाव को बदलना, इंसान को अपनी विचारधारा के सांचे में पूरी तरह ढाल देना।
बाप रे, और ये आया कहां से? अचानक तो नहीं टपका होगा?
नहीं, बिल्कुल नहीं। एरेंट कहती है कि ये किसी एक वजह से नहीं हुआ, ये 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत की कुछ खास ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक चीजों के मिलने का नतीजा था, एक विनाशकारी संगम।
कौन सी चीजें थी वो?
मुख्य रूप से दो धाराएं। पहली, यहूदी विरोध का एक आधुनिक राजनीतिक विचारधारा के तौर पर उभरना, ये पुराने धार्मिक नफरत से अलग था।
अच्छा, और दूसरी?
दूसरी धारा थी 19वीं सदी का यूरोपीय साम्राज्यवाद, खासकर अफ्रीका में, उसका जो तर्क था, उसके जो तरीके थे।
तो ये यहूदी विरोध और साम्राज्यवाद, इन्होंने मिलकर जमीन तैयार की?
हाँ, एरेंट का तर्क यही है। इन ताकतों ने यूरोप के जो राष्ट्र राज्य थे उनको कमजोर किया, समाज का ताना बाना तोड़ा और लोगों में एक भयानक अकेलापन, लोनलीनेस, एक जड़ से उखड़े होने, रूटलेसनेस का एहसास पैदा किया।
और एक फालतू होने का एहसास, जिसे वो सुपरफ्लुअसनेस कहती हैं।
बिल्कुल। और इसी अकेले, बिखरे हुए, खुद को फालतू महसूस करते हुए इंसान को सर्वसत्तावादी आंदोलनों ने अपना शिकार बनाया। इसी एहसास पे उन्होंने अपनी ताकत खड़ी की। सुनने में ही सिहरन होती है ना?
हाँ, वाकई। और किताब इसी गुत्थी को तीन हिस्सों में सुलझाती है। पहला हिस्सा यहूदी विरोध पर है।
इसमें एरेंट ये तर्क देती है कि 19वीं सदी का जो राजनैतिक यहूदी विरोध था, वो सदियों पुरानी धार्मिक यहूदी घृणा से अलग था। इसका एक खास पॉलिटिकल फंक्शन था।
क्या फंक्शन था?
उन्होंने यहूदियों की बड़ी विरोधाभासी स्थिति बताई। एक तरफ कुछ अमीर यहूदी परिवार जैसे रॉथशाइल्ड, वो सरकारों को पैसा देते थे, मतलब सत्ता के करीब थे।
अच्छा।
तो जो लोग सरकार के खिलाफ थे, क्रांतिकारी थे, उनके निशाने पर ये आ गए। लेकिन दूसरी तरफ यहूदियों का अपना कोई देश नहीं था, उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय समूह माना जाता था।
तो फिर राष्ट्रवादी भी उनके खिलाफ हो गए?
एग्जैक्टली, मतलब वो दोनों तरफ से फंसे हुए थे, और एरेंट कहती हैं कि इसी वजह से उन्हें हर प्रॉब्लम के लिए बलि का बकरा बनाना बहुत आसान हो गया।
और फिर वो ड्रेफिस मामले का जिक्र करती हैं, फ्रांस में हुआ था ये?
हाँ, ड्रेफिस अफेयर। एक यहूदी आर्मी कैप्टन अल्फ्रेड ड्रेफिस, उस पर देशद्रोह का झूठा आरोप लगा दिया गया। एरेंट के लिए ये केस स्टडी बहुत महत्वपूर्ण है, वो इसे सर्वसत्तावादी तरीकों की ड्रेस रिहर्सल कहती हैं।
ड्रेस रिहर्सल मतलब?
मतलब ये कि इस मामले ने दिखाया कि कैसे यहूदी विरोध जैसी नफरत भरी विचारधारा का इस्तेमाल करके भीड़ को, मतलब समाज के हर तबके के जो बेचैन भटके हुए लोग थे, उन्हें कैसे लामबंद किया जा सकता
है, समाज को बांटा जा सकता है, ध्रुवीकरण किया जा सकता है।
हाँ, और कैसे गणतंत्र के जो आधार थे, न्याय, सच, व्यक्ति के अधिकार, उन पर हमला किया जा सकता है। और सबसे खतरनाक बात जो सामने आई,
क्या?
कि एक बड़ा झूठ अगर उसे बार बार जोर शोर से दोहराया जाए तो वो लोगों के एक बड़े हिस्से के लिए राजनीतिक सच्चाई बन सकता है।
अरे बाप रे, ये बात तो आज भी बहुत बहुत ज्यादा रेलेवेंट लगती है।
बिल्कुल। खैर, अब आते हैं किताब के दूसरे हिस्से पर, साम्राज्यवाद, इंपीरियलिज्म। ये कनेक्शन शायद पहली नजर में उतना साफ ना लगे, लेकिन एरेंट के लिए ये बहुत जरूरी है।
हाँ, ये थोड़ा समझाएं, साम्राज्यवाद का सर्वसत्तावाद से क्या लेना देना?
एरेंट का तर्क है कि 19वीं सदी के आखिर में यूरोप ने जो अफ्रीका और एशिया में कॉलोनियां बनाई, खासकर अफ्रीका में जो हुआ वो एक तरह की प्रयोगशाला थी।
प्रयोगशाला किस चीज की?
सर्वसत्तावाद के तरीकों और विचारधाराओं की। देखिए, ये साम्राज्य फैला कौन रहा था? बिजनेस क्लास, पूंजीपति वर्ग, जो अपनी आर्थिक ताकत को अब राजनीतिक ताकत में बदलना चाहता था।
अच्छा।
साम्राज्यवाद ने दो चीजों के लिए आउटलेट दिया, एक तो अतिरिक्त पैसा जो यूरोप में लग नहीं पा रहा था, और दूसरे अतिरिक्त लोग।
अतिरिक्त लोग मतलब?
मतलब वो लोग जो यूरोप के समाज में फिट नहीं हो रहे थे, बेरोजगार, बेचैन नौजवान, एडवेंचर चाहने वाले, उन्हें कॉलोनियों में भेज दिया गया, और वहां शासन करने के लिए एक नया तरीका जरूरी हुआ।
कौन सा तरीका?
नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, मतलब ऐसे अफसरों का राज जो वहां के लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं थे, बस दूर बैठे हुकुम चलाते थे, मनमाने फरमान। एरन कहती हैं कि यही जो बेरहम, अमानवीय, गैर जिम्मेदार प्रशासन था, यही बाद में सर्वसत्तावादी राज्यों का मॉडल बना।
और विचारधारा?
हाँ, विचारधारा भी यहीं गढ़ी गई। इन कॉलोनियों के लोगों पर कब्जा करने, उनका शोषण करने को सही ठहराने के लिए क्या चाहिए था? एक बहाना।
और वो बहाना बना नस्लवाद,
रेसिज्म। बिल्कुल, ये सिर्फ थोड़ा बहुत ऊंच नीच का भाव नहीं था, ये बाकायदा एक थ्योरी बनाई गई कि गोरी नस्ल बेहतर है और बाकी नस्लें कमतर हैं, लगभग जानवर जैसी, ताकि उनके साथ कुछ भी किया जा सके, उसे सही ठहराया जा सके।
मतलब उन्हें अमानवीय बना दिया गया।
हाँ, और फिर जो हुआ, जैसे कांगो में बेल्जियम ने जो कत्लेआम किया, या दक्षिण अफ्रीका में बोर्स ने जो नीतियां अपनाई, एरेंट इन्हें आबादी को कंट्रोल करने और खत्म करने के शुरुआती प्रयोग मानती हैं।
और उनका सबसे डराने वाला तर्क ये है कि ये मानसिकता कि कुछ इंसानी जिंदगियां बेकार हैं, उन्हें मिटाया जा सकता है, अपने फायदे के लिए कुछ भी जायज है, ये मानसिकता यूरोप वापस आई।
क्या मतलब? यूरोप वापस आई?
हाँ, जब पहला विश्व युद्ध हुआ, यूरोप खुद टूट गया, लाखों लोग बेघर हो गए, राज्य विहीन, स्टेटलेस हो गए, उनकी नागरिकता छिन गई, तब यूरोप ने यही साम्राज्यवादी नस्लवादी सोच अपने ही लोगों पर या यूरोप में रह रहे बाहरी लोगों पर लागू करनी शुरू कर दी।
ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है कि कॉलोनियों का जुल्म लौटकर घर आ गया।
हाँ, और राज्य विहीनता ने यह भी दिखा दिया कि मानवाधिकार जैसी बातें कितनी खोखली हैं अगर आपके पास किसी देश की नागरिकता ना हो, अगर कोई सरकार आपकी जिम्मेदार ना हो, तो आपके अधिकार कौन बचाएगा? कोई नहीं, आप अधिकार रखने के अधिकार से ही वंचित हो जाते हैं।
ये बहुत गहरी बात है। तो ये हो गया साम्राज्यवाद, अब तीसरा हिस्सा।
हाँ, तीसरा और आखिरी हिस्सा सर्वसत्तावाद। यहाँ एरेंट बताती हैं कि कैसे पहले विश्व युद्ध की तबाही के बाद जो उथल पुथल मची, उसमें ये यहूदी विरोध और साम्राज्यवादी नस्लवाद के तत्व मिले और नाजीवाद और स्टालिनवाद जैसे आंदोलनों की शक्ल ले ली।
यहाँ एक और जरूरी फर्क बताती हैं, 19वीं सदी की भीड़, मॉब, और 20वीं सदी के जनसमूह, मासिस के बीच।
अच्छा, क्या फर्क है इन दोनों में?
भीड़ फिर भी थोड़ी बहुत संगठित थी,
उसमें अलग अलग तबकों के असंतुष्ट लोग थे, लेकिन जनसमूह ये बिल्कुल अलग था। ये वो आम लोग थे जो पूरी तरह से अकेले पड़ चुके थे, एक दूसरे से कट चुके थे, एटमाइज्ड जिसे कहते हैं,
समाज से, राजनीति से सबसे उदासीन।
हाँ, उनमें कोई साझा दुनिया का एहसास नहीं बचा था, बस अकेले खोए हुए लोग। और एरेंट कहती हैं कि यही अकेलापन, यही कटाव उन्हें सर्वसत्तावादी आंदोलनों के लिए बहुत वल्नरेबल बनाता है।
क्यों?
क्योंकि ये आंदोलन उन्हें वो चीजें देते हैं जो उनकी जिंदगी से गायब हो चुकी थी, एक मकसद, एक पहचान, एक अपनेपन का एहसास, भले ही झूठा हो, और सबसे बढ़कर दुनिया की सारी मुश्किलों का एक आसान, लॉजिकल लगने वाला जवाब देने वाली विचारधारा।
चाहे वो विचारधारा कितनी काल्पनिक या खतरनाक क्यों ना हो।
बिल्कुल। और एरेंट भीड़ और अभिजात वर्ग के बीच अस्थायी गठबंधन की भी बात करती हैं, मतलब कुछ पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी भी इन आंदोलनों से आकर्षित हुए। क्यों? क्योंकि वो मौजूदा सिस्टम से ऊब चुके थे और इन आंदोलनों में उन्हें एक तरह का रेडिकलिज्म, एक तोड़फोड़ का आकर्षण दिखा। फिर वो बताती हैं कि ये सर्व सत्तावादी राज्य चलता कैसे है, उसकी मशीनरी क्या है।
हाँ, और इसके दो मुख्य पहिए हैं, प्रचार, प्रोपेगेंडा, और आतंक, टेरर। प्रचार और आतंक, ये कैसे काम करते हैं?
प्रचार का इस्तेमाल होता है बाहरी दुनिया से, यानी जो लोग अभी पूरी तरह रेजिम के कंट्रोल में नहीं है, उनसे डील करने के लिए। झूठ फैलाना, अपनी छवि बनाना, दुश्मन गढ़ना।
और आतंक?
आतंक है शासन का असली सार। ये सिर्फ विरोधियों को दबाने के लिए नहीं होता, ये अपनी ही पूरी आबादी पर लागू होता है। इसका मकसद होता है लोगों को लगातार डर, शक और अनिश्चितता की हालत में रखना, ताकि वो कभी संगठित ना हो सकें, कभी आजादी से सोच ना सकें।
और सरकार का स्ट्रक्चर भी बड़ा अजीब बताया उन्होंने, प्याज जैसा।
हाँ, अनियन लाइक स्ट्रक्चर, मतलब सत्ता की कई परतें होती हैं, ऑफिसों का डुप्लीकेशन होता है, ये पता ही नहीं चलता कि असली पावर सेंटर कहाँ है, सब कुछ रहस्य में डूबा रहता है, और सबसे ऊपर होता है नेता,
लीडर।
और ये नेता कोई आम तानाशाह नहीं होता, नहीं, उसे साधारण तानाशाह नहीं माना जाता, उसे तो जैसे प्रकृति या इतिहास के नियमों का अवतार माना जाता है। नाजीवाद में वो प्रकृति के नियम लागू कर रहा था, स्टालिनवाद में इतिहास के, उसकी बात पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।
बाप रे।
और यहीं पर आरेंट का सबसे मूल, सबसे गहरा विश्लेषण आता है। वो कहती हैं कि सर्वसत्तावाद का असली सार, उसका एसेंस इस बात में है कि वो अपनी विचारधारा को ही पूरी की पूरी सच्चाई बना देना चाहता है।
मतलब
अगर विचारधारा कहती है कि फलां नस्ल घटिया है या फलां क्लास खत्म होने वाली है, तो उसे सचमुच में वैसा बना देना है, कल्पना को हकीकत में ढाल देना है।
और इसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं
आतंक का, टेरर। और ये आतंक अंधाधुन नहीं होता, ये विचारधारा के अपने पागल लॉजिक के हिसाब से चलता है। इसका मकसद होता है इंसान के अंदर की हर चीज, उसकी सहजता, उसकी सोचने की क्षमता, उसकी दूसरों से जुड़ने की काबिलियत, उसकी अपनी अलग पहचान, सब कुछ नष्ट कर देना।
और इस सब का सबसे भयानक चरम रूप कहाँ देखने को मिला?
यातना और विनाश शिविरों में, कॉन्सेंट्रेशन एंड एक्सटर्मिनेशन कैंप्स में, ऑशविट्ज गुलाग। एरेंट के लिए शिव सिर्फ भयानक हादसे नहीं थे, ये सर्व सत्तावाद की जरूरी संस्थाएं थी।
एसेंशियल?
जरूरी।
कैसे?
वो इन्हें प्रयोगशालाएं कहती हैं, जहां सर्व सत्तावाद का जो दावा था कि सब कुछ मुमकिन है, उसे परखा जा रहा था। इन शिविरों को डिजाइन ही ऐसे किया गया था कि इंसान की हस्ती को पूरी तरह मिटा दिया जाए।
पहले उसके कानूनी अधिकार छीनो, फिर उसकी नैतिक पहचान खत्म करो, और आखिर में उसकी व्यक्तिगत पहचान भी मिटा दो।
हाँ, ताकि ये साबित किया जा सके कि इंसान असल में फालतू है, अनावश्यक है, उसे चीज की तरह इस्तेमाल करके फेंका जा सकता है या मिटाया जा सकता है। शिविरों में आकर ही विचारधारा का वो भयानक तर्क अपने अंजाम तक पहुंचा।
उफ, ये सब सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस भयानक तस्वीर से कुछ बहुत जरूरी बातें समझ आती हैं, कुछ की थीम्स।
हाँ बिल्कुल, सबसे पहली बात तो यही है कि सर्व सत्तावाद की नवीनता, ये बिल्कुल नया था, पारंपरिक तानाशाही से अलग।
कैसे अलग?
पारंपरिक तानाशाही सिर्फ राजनीतिक कंट्रोल चाहती है, लेकिन सर्व सत्तावाद इंसान के पूरे वजूद पर कब्जा करना चाहता था, उसकी निजी जीवन, उसकी सोच, उसकी आत्मा पर। वो इंसान को बदलना चाहता था, सिर्फ काबू में रखना नहीं।
दूसरी अहम बात, अकेलापन और परमाणुकरण, एटोमाइजेशन, समाज का टूटना।
हाँ, अरेंट कहती है कि ये सर्व सत्तावाद के फलने फूलने के लिए जमीन तैयार करता है। अकेलापन मतलब सिर्फ अकेले रहना नहीं, बल्कि दुनिया में खुद को बिल्कुल कटा हुआ बेगाना महसूस करना।
और जब लोग ऐसे अकेले और बेगाने हो जाते हैं तब?
तब वो ऐसी विचारधारा या नेता के बहकावे में आसानी से आ जाते हैं जो उन्हें एक झूठा ही सही अपनेपन का एहसास दिलाता है और उनकी सारी तकलीफों का एक आसान सा जवाब देता है।
ये बात आज के समय में बहुत सोचने वाली है। सोशल मीडिया के जमाने में हम शायद ज्यादा कनेक्टेड दिखते हैं, पर क्या असल में ज्यादा अकेले हो गए हैं?
ये बहुत बड़ा सवाल है। तीसरा थीम है विचारधारा और आतंक का गठजोड़। ये दोनों मिलकर कैसे पूरे सिस्टम को चलाते हैं?
विचारधारा एक कहानी देती है, नस्ल का संघर्ष या वर्ग संघर्ष, जो पूरी दुनिया को समझाती है, भविष्य बताती है।
और आतंक उस कहानी को जबरदस्ती सच बनाने का काम करता है। ये लोगों की सोचने समझने की क्षमता को ही पंगु बना देता है।
और चौथा, वो सबसे डरावना आइडिया, मानवीय निरर्थकता या अतिरिक्तता, सुपरफ्लुअसनेस, इंसान का फालतू हो जाना।
हाँ, साम्राज्यवाद ने ये सोच शुरू की थी कि कुछ लोग बेकार हैं। सर्वसत्तावाद ने इसे रूलिंग प्रिंसिपल बना दिया और यातना शिविर इसी फालतूपन को पैदा करने वाले कारखाने थे,
जहां इंसानों को व्यवस्थित तरीके से उनकी पहचान, उनके अधिकार, उनकी गरिमा से वंचित किया गया,
ये साबित करने के लिए कि उन्हें मिटाया जा सकता है और किसी को फर्क नहीं पड़ेगा।
ये शायद एरेंट की सबसे भयानक चेतावनी है।
और पांचवा थीम है निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का विनाश।
मतलब?
देखिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र में हमारी एक निजी दुनिया होती है, परिवार, दोस्त, अपनी सोच, और एक सार्वजनिक दुनिया, राजनीति, समाज। सर्वसत्तावाद इस फर्क को मिटा देता है।
सब कुछ राजनीति है, सब कुछ विचारधारा के अधीन।
हाँ, आपकी दोस्ती, आपकी कला, आपकी हर चीज पर रिजीम का कंट्रोल। कोई निजी कोना नहीं बचता जहां आप आजाद महसूस कर सकें। सब कुछ पॉलिटिकल हो जाता है।
इस किताब में कुछ लाइनें तो ऐसी हैं जो दिमाग में घूमती रहती हैं, बहुत यादगार।
हाँ बिल्कुल, जैसे एक ये है, सर्वसत्तावादी शासन का आदर्श विषय कट्टर नाजी या कट्टर कम्युनिस्ट नहीं, बल्कि वे लोग हैं जिनके लिए तथ्य और कल्पना और सत्य और असत्य के बीच का अंतर अब मौजूद नहीं है।
वाह, कितनी गहरी बात है। मतलब असली खतरा कट्टर मानने वालों से भी ज्यादा उन लोगों से है जो इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि सच और झूठ में फर्क ही नहीं कर पाते।
एग्जैक्टली, लगातार झूठ और प्रोपेगेंडा से लोगों में गहरा संदेह पैदा हो जाता है। वो किसी भी चीज पर यकीन करना बंद कर देते हैं और फिर वो सिर्फ एक ही चीज पर भरोसा करते हैं, लीडर की मर्जी।
या आज के फेक न्यूज और पोस्ट ट्रूथ के जमाने में कितना सच लगता है ना?
बिल्कुल। एक और कोट है जो मुझे बहुत छूता है, अकेलापन जो कभी वृद्धावस्था जैसी कुछ सीमांत सामाजिक परिस्थितियों में झेला जाने वाला एक अनुभव था, हमारी सदी के लगातार बढ़ते जनसमूह का रोजमर्रा का अनुभव बन गया है।
ये सीधा हमारे समय पर टिप्पणी है। आधुनिक जीवन, शहरों की भागदौड़, समुदायों का टूटना, इसने बड़े पैमाने पर अकेलापन पैदा किया है।
और ये अकेलापन सिर्फ दुखद नहीं, ये खतरनाक भी है, क्योंकि ये लोगों को उन ताकतों का आसान शिकार बनाता है जो उन्हें झूठे जुड़ाव और झूठे समाधान का लालच देती है।
और तीसरा कोट शिविरों के बारे में, सर्वसत्तावादी शासनों के यातना और विनाश शिविर उन प्रयोगशालाओं के रूप में काम करते हैं जिनमें सर्वसत्तावाद का मौलिक विश्वास कि सब कुछ संभव है सत्यापित किया जा रहा है।
ये शिविर सिर्फ सजा देने या मारने की जगह नहीं थी, वो एक प्रयोग थे ये देखने का कि इंसान को किस हद तक तोड़ा जा सकता है, उसकी इंसानियत को कैसे मिटाया जा सकता है।
ये साबित करने के लिए कि विचारधारा के नाम पर कुछ भी मुमकिन है, इंसान को पूरी तरह एक चीज में बदला जा सकता है। ये दिखाता है कि विचारधारा जब हकीकत पर पूरी तरह हावी हो जाए तो क्या हो सकता है।
तो सवाल उठता है कि हम आज एरेंट की इन बातों से क्या सीख सकते हैं, इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं।
मेरे ख्याल से बहुत कुछ। उनका विश्लेषण आज भी हमें सियासी खतरों को पहचानने और उनका सामना करने के लिए एक जरूरी टूलकिट देता है।
पहली चीज तो है मीडिया साक्षरता और आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। एरेंट हमें सिखाती हैं कि सच और झूठ के बीच की जो लकीर धुंधली की जा रही है उसके प्रति कितने सचेत रहने की जरूरत है।
हाँ, आज के जमाने में जहाँ हर तरफ से इन्फॉर्मेशन आ रही है, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या सच है, क्या झूठ, क्या प्रोपेगेंडा है। स्रोतों को जांचना, सवाल पूछना।
बिल्कुल, जो चीजें बहुत आसान जवाब देती दिखे उन पर शक करना। दूसरी जरूरी बात है नागरिक जुड़ाव और समुदाय का महत्व।
मतलब उस अकेलेपन से लड़ना जिसके बारे में एरेंट ने चेतावनी दी थी।
हाँ, इसका तरीका है समाज से जुड़ना, अपने आस पड़ोस के मुद्दों में दिलचस्पी लेना, लोकल ग्रुप्स में शामिल होना, बहस में हिस्सा लेना, मिलकर काम करना, क्योंकि राजनीतिक आजादी अकेले में नहीं मिलती, वो लोगों के साथ मिलकर ही बनती और बचती है।
तीसरा, एरेंट की किताब हमें कुछ राजनीतिक चेतावनी संकेतों को पहचानना सिखाती है।
जैसे?
जैसे जब किसी एक ग्रुप को बलि का बकरा बनाया जाने लगे, जब नेताओं की भाषा अमानवीय होने लगे, जब कोई नेता कहे कि सिर्फ वही जनता की आवाज है, जब तथ्यों को नकार कर सिर्फ अपनी कहानी सुनाई जाए, जब कोर्ट मीडिया जैसी आजाद संस्थाओं को कमजोर किया जाए।
हाँ, इन संकेतों को जल्दी पहचानना लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुत जरूरी है।
और चौथा, राज्यविहीन और शरणार्थियों की हालत को समझना।
हेरेंट ने दिखाया था कि जब इंसान से अधिकारों का अधिकार छिन जाता है, जब वो किसी देश का नहीं रहता, तो उसकी हालत कितनी दयनीय हो जाती है। आज दुनिया भर में जो शरणार्थी संकट है, उन्हें हमें सिर्फ मानवीय नहीं बल्कि गहरे राजनीतिक संकट के तौर पर देखना होगा।
तो अगर सब बातों को समेटें तो मेरे लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि आज़ादी कोई गारंटीड चीज़ नहीं है, ये बहुत नाजुक है।
हाँ, इसे रोज कमाना पड़ता है, बचाना पड़ता है।
कैसे? खुलकर बोलकर, सवाल पूछकर, एक दूसरे से जुड़कर, एक साझा दुनिया बनाकर। सर्वसत्तावाद कोई बाहर से आने वाला दानव नहीं है, वो हमारे समाज के अंदर से ही पनप सकता है, अगर हम अपनी राजनीतिक संस्थाओं और सामाजिक रिश्तों को टूटने दें।
और मेरे लिए जो सबसे स्थायी अंतर्दृष्टि है वो ये कि सबसे बड़ा खतरा शायद नफरत या हिंसा में उतना नहीं है जितना हमारी अपनी सोचने की, सही गलत में फर्क करने की, नैतिक निर्णय लेने की क्षमता के कमजोर होने में है।
अब सच झूठ का फर्क मिट जाए।
हाँ, तब लोग कुछ भी मानने और कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। एरेंट हमें याद दिलाती हैं कि इतिहास की भयानक त्रासदियों को बस गुजरी हुई बात मानकर भूलना नहीं चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि वो कैसे हुई, किन विचारों के नतीजे थे, ताकि हम उन्हें दोहराने से बच सकें।
तो श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एरेंट हमें याद दिलाती हैं कि इंसानियत को, सोचने की आज़ादी को और हमारी इस साझा दुनिया को बचाने के लिए लगातार चौकन्ना रहने, हिम्मत दिखाने और एक दूसरे का साथ देने की ज़रूरत है। आज की इस तेज रफ्तार बिखरी हुई सी दुनिया में हम अपनी सोचने की आज़ादी और अपनी साझा दुनिया को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।